अब मजलिस के आदाब बताए गए कि अब तुम्हारी मजलिसें कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, वो लोग बस मजलिसों में भी बैठ के क्या करते थे, एक तरफ बैठ जाते थे। और अब देखें, एक मजलिस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई वाज़ो नसीहत की मसलन कोई गैदरिंग है, तो अब क्या करेंगे, टोलियां बना के, ग्रुप्स बना के अपने जैसों के, उनके साथ होके बैठ जाएंगे एक तरफ, ताकि जो है ना, जब वो बात करें तो साथ साथ एक दूसरे को आंखें मारते जाएं, साथ साथ कहते जाएं देखो जरा क्या कह रहे हैं, साथ ये वो कोई कमेंट्स वगैरह देते जाएं, और या मुसलमानों के ऊपर कोई बातें बनाते जाएं, तो वो उनकी अपनी डिस्कशन एक तरफ चल रही होती थी ना। और इसके लिए क्या होता था, साथ जुड़ के बैठ जाते थे, ताकि कोई बीच में ना आके बैठे हमारे। अगर कोई एंटर हो जाता था मजलिस के अंदर, तो उसको भी अपने बीच में नहीं बैठने देते थे, इसलिए कि अगर ये बैठ गया और इसको हमारी कोई बात सुन गई, तो इसने तो जाके बता देना, हमारी तो शिकायत लगा देगा। हमारी शिकायत लग गई तो फिर हम क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा तुम ऐसे बातें करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते हो। तो इसलिए अब किसी को बीच में घुसने ही नहीं देते थे, अपने जैसों को साथ साथ मिला के ना, तो इस तरह से एक ग्रुप सा बना के बैठ जाते थे। अच्छा, ये कोई ऐसे नहीं कि उनके सरों पे कोई सींग थे, इस तरह के आपको हर माशरे में मिल जाएंगे लोग, आज भी हैं, उस वक्त भी थे, जो दीन से सिंसेयर नहीं होते। चलो आप दीन की बात एक तरफ रखें, किसी भी कॉज में आप देख लें, ऐसे लोग जो मफाद परस्त से होते हैं, किसी फायदे के लिए साथ लग जाते हैं और उसके बाद बीच बीच में से जड़ें काटते रहते हैं, देखते होंगे आप ऐसे लोगों को। तो ये भी इसी तरह के थे मुनाफिकीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अच्छा, आप देखें कि बात मुनाफिकीन को भी समझानी मकसूद, सबको बतानी मकसूद है, लेकिन ईमान वालों को कहा जाता है। बहुत से गलत काम है करते मुनाफिक हैं, मगर जब इसलाह की गई तो अपनों से बात शुरू की गई, अपनों को कहा गया ईमान वालों तुम ऐसे करो। इज़ा क़ीला लकुम, जब तुमको कहा जाए, तफस्सहू फिल मजालिस, तुम जगह पैदा करो, कुशादगी पैदा करो मजलिसों में, फफसहू, तो कुशादगी पैदा कर दिया करो। अच्छा, अब मैंने आपको उस तनाजुर में तो बता दी बात कि उस वक़्त तो ऐसा वो लोग करते थे। ये बात सिर्फ उस वक़्त के लिए नहीं, बल्कि अब हर मजलिस के अदब के लिए ये बात है कि जब मजलिस कोई भी हो, कोई भी गैदरिंग हो, चाहे आपके घर में दावत है, चाहे मस्जिद में कोई कुछ फंक्शन है, चाहे आपकी कोई मीटिंग है, चाहे आपकी तालीम की मजलिस है, कोई क्लास है, जुमे का दिन है, या सफ में जगह बनाने की बात है, या आप देखते हैं रमज़ान वगैरह में जो आखिरी अशरा होता है उसके अंदर इस कदर रश होता है मस्जिद के अंदर कि बहुत बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ, मतलब इतने जगह बहुत तंग हो जाती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। अब कोई आए तो क्या होना चाहिए रवैया, मोमिनों को मुखातिब किया गया यहाँ पे, मोमिनों का कैसा रवैया होना चाहिए। तफस्सहू फिल मजालिस, कुशादगी पैदा करो मजलिसों में। हमारा क्या रवैया होता है, जूं ही हम देखते हैं ना कि कोई आ रहा है, उसी वक्त और पैर पसार के बैठ जाते हैं, उसी वक्त और खुले होना शुरू हो जाते हैं, एक तरफ अपना बैग रख लेते हैं, एक तरफ कोई और चीज रख लेंगे बोतल पानी की, और अब टांगे भी फैला लेंगे खूब के, जगह ना इसको दें हम बैठने की, जाए जहां पे मर्जी बैठे, ऐसे ही होता है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे फफसहू, तो कुशादगी पैदा करो। जब कोई जब तुमसे कहा जाए कुशादगी पैदा करो मजलिसों में, और जरूरी नहीं कोई खड़ा होके ही आपको कहे तो फिर ही है, हर एक को पता है कि कोई आने वाला आया है, तो अब मजलिस भरी हुई है, अब क्या करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ये हैं इस्लामिक एटिकेट्स। कोई आए तो उसको ऐसा ना फील हो कि मैं अनवेलकम्ड हूं, वो खड़ा खड़ा वहां पे सूख रहा है और बाकी लोग आराम से खुले होके बैठे हुए, कि नहीं नहीं साथ साथ नहीं चिपको, दूर दूर जरा रहो, इतनी जगह रखनी है कि ना तो दूसरा बैठ सके और ना ही ऐसा हो कि हम हमारे साथ कोई चिपके, बस इतनी जगह रहो कि हम खुले खुले बैठे, यानी गोया दूसरे का बिल्कुल ख्याल ना करना। तो ये इस्लाम हमें देखिए कितनी कितनी बारीक बातें भी सिखाता है, कि कैसे तुमने किस तरह से डीलिंग करनी है, किस तरह से मजलिस से तुम्हारी गैदरिंग्स कैसी होनी चाहिए। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने यही नहीं सिर्फ फरमाया कि फ़फ़साहू तुम कुशादगी पैदा करो, साथ ही इसका रिवॉर्ड भी बता दिया, अगर तुम कुशादगी पैदा करोगे ना यफ़सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा, ये तुम्हारे लिए इनाम है इस बात का, तुम लोगों के लिए कुशादगी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करेगा। हम तो कहते हैं और लोगों के लिए तंगी कर दें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। कहाँ पे कुशादगी देगा अल्लाह तुम्हें, किस चीज में? तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में कुशादगी देगा, तुम्हारे रिस्क में कुशादगी देगा, तुम्हारी कब्रों को कुशादा कर देगा, तुम्हारी जन्नत की जगह को कुशादा कर देगा। ये कुशादगी तुम्हारे लिए इनाम है, जिस चीज चीज में तुम कुशादगी चाहते हो ना, तुम्हारा सीना जो तंग है उसको भी कुशादा कर देगा। तुमने अपना सीना खोला किसी के लिए ना, और अल्लाह दूसरों का दिल तुम्हारे लिए खोल देगा, और जहां जहां तुम कुशादगी चाहते हो अल्लाह कुशादगी देगा तुम्हें। हमें तो देखते ही दूसरे को एक घुटन सी होने शुरू हो जाती, लो अब पहले यहां पे इतना रश है, अब और ऊपर से ये भी आ गए, और अब लोग जो हज पे जा रहे हैं तो याद रखें हज पे जाएं आप उम्रे पे जाएं, अब तो वहां पे काफी रश ही होता है, वहां पे जाहिर है आपको पता है कितना हजूम होता है, कितने लोग जैम पैक्ड होते हैं। तो हरम में मैंने अपनी आंखों से ये कुछ चीज को देखा कि यानी कुछ औरतें आके बैठना चाह रही थी उन जगह, जाहिर है तंग ही होती है वहां पे, तो बजाय कुशादगी करने के जो औरतें बैठी हुई थी वो वहां पे हरम के अंदर लड़ना शुरू हो गई कि यहाँ पे बैठी क्यों हो, तो बजाय इसके कि हम कुशादा हो जाएं, जरा जरा हम सिमट के बैठ जाएं, जरा हम एक दूसरे के साथ हो जाएं ताकि दूसरा भी आ जाए। ये हमारा इखलाक है कि हम वहां पहुंच के भी ये मुजाहरे करते हैं। इसी तरह हम सफ में अगर खड़े होते हैं, इतनी जगह नहीं रखते कि कोई इतनी हो जाए कि जिसमें कोई खड़ा हो सके, या तो इतने जरा सिमट जाओ कि दूसरा खड़ा हो जाए, वो भी नहीं करना, और ना ही दूसरे के साथ लग के खड़े होना। थोड़ी सी जगह रखनी जिसमें एक बस कदम आ जाए, ताकि हम खुले खुले रहें, हवा आती रहे, कभी नहीं दूसरे को जगह देते। इसीलिए आप देखें ना तंगियां हैं, तंग है हमारे दिल भी तंग हैं, हमारे घर भी तंग हो गए दूसरों के लिए, हमारे रिस्क में भी तंगियां हैं। कुशादगी दोगे तो अल्लाह कुशादगी देगा। और कतादा फरमाते हैं कि ये वो लोग भी थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आगे होके बैठने की कोशिश करते थे। कुछ मुसलमान भी, तो आप देखिए ना वहां पे मुनाफिक भी थे, मुसलमान भी, हर तरह के ईमान वाले थे। कईयों का तो ऐसा ईमान था कि कोई अबू बकर सिद्दीक और उमर और अली और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा थे, और ऐसे भी लोग थे जिनका ईमान उससे कम था, फिर और भी उससे भी कम ईमान वाले लोग थे, मतलब हर तरह के थे। सारे ऐसे ही नहीं थे कि जो आप पक्के सहाबा का जिस तरह ईमान सुनते, सब उस तरह से नहीं थे, आम लोग भी थे, उससे नीचे के दर्जे के थे, फिर मुनाफिकीन भी थे। तो जब वो कुछ मुसलमान जब आते थे, तो जब वो बैठते थे मजलिस में, तो जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए हैं, तो उनको तो यही होता था कि हम ज्यादा आपके करीब होके बैठे। अब वो उनको कहा गया कि तफस्सहू फिल मजालिस, अपना दायरा वसी कर लो ताकि दूसरे बैठ सके। अब उनको जाहिर सी बात है, ये उन इंसान को होता है ना कि हम करीब बैठे हैं और वो उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो, तो जाहिर सी बात है कईयों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, मुनाफिकीन को खास तौर पे, कि देखो जी इनको उठा दिया और इनको, ये बेचारे शौक से यहाँ बैठे थे, इनको ऐसे कर दिया। ये आगे इंशाल्लाह मैं हदीस आपको बताती हूँ। तो ये भी कहा गया, व इदा कीलन शुजू फन शुजू, जब कहा जाए तुमसे उठ जाओ तो उठ जाया करो, ये नहीं कि टस से मस ना हो वहां पे। अगर अमीरे मजलिस कह रहा है कि भैया आप लोग जरा उठ के आप इधर हो जाएं, और किसी तरह वो गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहा है, आप ये जरा जगह छोड़ दें, आप लोग यहाँ पे चले जाएं और दूसरों को यहाँ बैठने दें, तो इसके अंदर कुछ माइंड करने की बात नहीं है, इसके अंदर बुरा मानने की बात नहीं है, कोई नहीं है, उठ जाया करो। फिर कहा जाता है कि ये एक वाक्य के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मस्जिद में तशरीफ रखते थे, और जगह सारी की सारी लोगों से भरी हुई थी, और बाद में बाज ऐसे सहाबा आए जो शुरकाए बदर थे, जो बदर में शरीक हुए थे, और इस वजह से वो लोग बड़े काबिले एहतराम समझे जाते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको बहुत इज्जत देते थे, वो जब पहुंचे तो जगह नहीं थी, इसलिए वो खड़े रहे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो आम ये हुक्म दिया कि जरा खिसक के मजलिस में कुशादगी पैदा करो, इनको जगह दे दो, और बाज सहाबा को उठ जाने के लिए भी फरमाया। जिनको मस्जिद से उठाया उनमें यह भी इतमाल है कि वो हर वक्त हाजिर बाश लोगों, हो सकता है वो ऐसे लोगों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही रहते हो, जिनके उस वक्त मस्जिद से उठ जाने में कोई बड़ा नुकसान ना हो। ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजलिस में वुसत करने के लिए और सिमट कर बैठने का हुक्म दिया तो कुछ लोगों ने इस पर अमल ना किया हो, इसलिए उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे उठाया। जैसे आप कहते ना भाई उठ जाएं इस वक्त, लेकिन कोई भी नहीं उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों को कहना पड़ा। अब ये बात ना उन्होंने मुनाफिकीन ने पकड़ ली। अब वो तो जरा जरा सी बात को फौरन वो कर लेते थे ना, और उन्होंने पकड़ के कहा लो देखो बड़े इंसाफ वाले बनते हैं और खुद तो इंसाफ करते नहीं है लोगों के साथ, कि जो आके पहले से बैठे हैं उनको उठा रहे हैं और इनको बिठाने शुरू हो गए। यानी उनको तो एक बहाना चाहिए होता था ना। तो कहा गया अगर अमीरे मजलिस उठाए, मसलन मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई फंक्शन है तो मसलन कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा जाए भाई आप लोग ऐसा करें, आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं, आप तो सुनते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग पीछे चले जाएं और जो ये नए आने वाले हैं जो हमारे मेहमान हैं इनको यहाँ बैठने दें, तो उसमें कोई माइंड करने की बात नहीं कि वो कहेगा ये देखो हमें उठा दिया और हमें देखो ऐसे कर दिया, ये तो इन्होंने बड़ा बुरा किया। और अगर जो भी मजलिस को एडमिनिस्ट्रेटर है उसका, या अमीरे मजलिस जो है उसका प्रेसिडेंट है, जो उसका वो है जो मजलिस को सजाए बैठा हुआ है, वो अगर कहता है या उसके जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आगे वो कहते हैं कि भाई आप यहाँ से उठ जाएं, तो उसमें कोई किसी को भी इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, इससे कोई बेइज्जत नहीं हो जाता। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यरफाउल्लाहुल्लदीना आमनू मिनकुम, जो ईमान वाले ना अल्लाह बुलंद करता है उनको, इसकी वजह से कोई नीचा नहीं हो जाता। अब ये नहीं है कि वहां पे टस से मस ना हो, वहीं पे बैठे रहे हमने तो नहीं उठना यहाँ से, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं। कितनी मजलिसों के अंदर इस तरह से एक बदनज़मी होती है और एक यानी बहुत ही बुरा माहौल हो जाता है, तू तू मैं हो जाती है। अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि हॉल खाली करना होता है, फिर कहा जाता है आपने उठ जाएं यहाँ से जल्दी करें हॉल खाली करें, तो उठाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर जो मुंतजमीन है उठाएं तो उठ जाओ, अगर कुशादगी पैदा करने को कहें तो कुशादगी पैदा करो। तो ये सारी चीजें देखिए कितनी बारीक बारीक बातें हैं ना जो सिखाई गई हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर मजलिस वो है जिसमें क्या हो, जो फराग हो, खुली हो सबके लिए, यानी जिस मजलिस में लोगों के दिल भी खुले हों और आने वालों को भी जगह दें। अब कुछ मजलिस के आदाब हैं जो और भी हदीस से भी हमें पता चलते हैं। मसलन है कि जब आप किसी मजलिस में हो, एक तो सबसे पहली बात है कि साले लोगों की मजलिस में बैठना चाहिए, नेक लोगों की मजलिस में, अच्छे लोगों की मजलिस में बैठना चाहिए, क्योंकि जो लोग जिनकी जिंदगियों में बड़ा बड़ा चेंज आया ना, तो वो उसकी वजह ये बताते हैं कि हम सालेहीन की मजलिस में बैठा करते थे। साले इंसान की मजलिस इंसान को साले बना देती है, बुरों की मजलिस बुरा बना देती। दूसरा क्या है, मजलिस की गुफ्तगू में शरीक हो। ये नहीं है कि भाई आप अपने आप को बहुत बड़ी चीज, अब मैं तो एक टीचर हूं या मैं तो एक प्रिंसिपल हूं या मैं तो इनसे बड़ी हूं, ये लोग तो छोटे और मेरा इल्म इतना ज्यादा, या मेरे पास माल बहुत है, या कोई भी अपनी बड़ाई की वजह से आप एक तरफ को होके जरा जरा ऊंचे से होके बैठे रहे और अलग थलग होके बैठे रहे और बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए, कि जैसे कि अपने आप को नुमाया करने के लिए ना, कि मैं कोई बड़ी चीज हूं, नहीं, जैसे आम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आप भी उसमें हिस्सा लें। देखिए सोचें सहाबा कराम जब गुफ्तगू में मसरूफ होते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें शरीक होते थे। अगर वो ऐसी कोई दुनिया की बात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके अंदर शरीक होते थे। ये नहीं कि हर वक्त उनको दर्स ही देते रहते थे वो, कोई वो हर वक्त उनको कुछ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तालीम इतना खूबसूरत था, बातों बातों में ही बात उनको समझा देते थे। तो मजलिस में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गमगीन होके बैठे हुए हैं, बस मुंह बसोर के बैठे, मुस्कुराते चेहरे के साथ हशाश बिशाश होके बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना कटता था, कितने गमगीन रहते थे लोगों की खैरखाई में, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। ये सिर्फ अपने ऊपर एक वो सजा के रखना कि हम तो बहुत अपनी आखरत का खौफ रखने वाले हैं, तो हम तो कभी मुस्कुराते ही नहीं हैं, हम बहुत अल्लाह वाले हैं, ये भी कोई तकवा नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो, आखरत का जिक्र हो, कोई मजलिस इसे खाली ना हो। और अगर कोई लोग दूसरी बात कर भी रहे हैं तो किसी तरह से ऐसे मौजू को पलटा के हिकमत के साथ इस तरफ को लाया जाए, इसी तरह मस्जिद में जहां जगह मिले वहां पे बैठा जाए। देखें आप, ये भी एक तमीज होती है कि मजलिस में चीरते हुए, कूदते हुए, फलांगते हुए लोगों को आगे ना जाएं। ठीक है, ऐसे से लोगों को तकलीफ होती है, चाहे अब वो जुमे का खुतबा हो रहा है, मस्जिद की सफें हैं, या कोई भी और मजलिस है। इसी तरह मजलिस में किसी बैठे हुए आदमी को उठा के इसकी जगह बैठने की कोशिश न करनी चाहिए, ये बहुत बुरी आदत है। इससे दो लोगों के दिलों में नफरत भी पैदा होती है, और इससे ये भी लगता है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। किसी को खुद ना उठाएं कि कि मैं भाई आप यहाँ से उठ जाएं कि मैंने बैठना। हाँ, ये है कि छोटों को बड़ों के अदब में जरूर खड़े हो जाना चाहिए, और उनको बैठने के लिए कहना चाहिए, उतना इंसान का है। लेकिन जो छोटे हैं उम्र में, वो बड़ों के लिए अदब में खड़े हों और उनको जगह दें। अगर नहीं कोई जगह, उनको जगह दें, खुद नीचे बैठ जाएं, उनको ऊपर जगह दें। ये भी एक अदब की बात है, एहतराम की बात है। बार दफा देखा गया बच्चे पूरे पूरे सोफों के ऊपर बैठे होते हैं, औरतें खड़ी हुई हैं और बच्चे टांग पे टांग रखे बैठे हैं, और ये बिल्कुल अदब नहीं है कि उठ जाना चाहिए। ये हमें सिखाना चाहिए बच्चों को कि इस तरह से नहीं करना, और ये अदब है। अगर मजलिस में लोग घेरा डाले बैठे हैं, यानी हलका बनाए बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, तो उनके बीच में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे शख्स के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। कि कोई जैसे बहुत कोई फ्रैंक होते हैं ना, लो जी मैं यहाँ पे लेके अपनी प्लेट लेके बीच में बैठ गए सेंटर में। अब जो हो चुका आज तक वो तो हो चुका, लेकिन जब ये हम आदाब सीख रहे हैं ना, तो हमें इसके ऊपर अमल करना है आपसे, और दूसरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के ऊपर लानत भेजी है कि वो बीच में जाके बैठ गया। यानी अपनी वो एक जताना चाहता है ना कि मैं एक बहुत बड़ी चीज हूं। इसी तरह मजलिस में बैठे हुए लोगों में से अगर कोई किसी जरूरत से उठ के चला जाए, तो उसकी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। बहुत दफा ये देखा गया है कि कोई लोग अपनी सीट छोड़ के गए हैं खाना लेने के लिए, जब वापस आए तो कोई और वहां पर बैठा हुआ। अब वो तो पहले ही वेट कर रहा था कि कौन उठे तो मैं फटाफट बैठूं, अब वो बैठ गया तो अब तो वो उठेगा ही नहीं। आप हमें क्या, आप अपनी सीट क्यों छोड़ के गए थे? छोड़ के गए तो आप खड़े रहें, बेशक वो हाथ में प्लेट लिए खड़ा हुआ है। हालांकि इस वक्त कौन हकदार है उस जगह का? वो जो गया था उठ के, वो हकदार है। जब वो वापस आ जाए, तो अगर गलती से कोई बैठ भी गया, तो उसको उठना है कि ये उसकी जगह थी। हाँ, अगर कोई ये ही हो कि वो कोई चला ही गया, अब उसने वापस नहीं आना, तो फिर आप बेशक उस जगह पे बैठे, अदरवाइज वो है उसी की जगह, चाहे वो कितनी भी देर में आए। अक्सर जहां पे कुर्सियों की कमी होती है ना, वहां पे जो लोग खड़े होते हैं वो इस इंतजार में होते हैं कौन बस उठे, उठ के जरा वो 2 कदम ही गया फौरन उस जगह बैठ जाए, चाहे वो बाथरूम गया अभी वापस आ रहा है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी फिर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है ये बातें, अपनी तरफ से नहीं, मैं अपने एटिकेट्स आपको मजलिस के बता रही, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में, तुम में से कोई अपनी नशित से उठे फिर वापस आ जाए, तो वो उस जगह का ज्यादा मुस्तहिक है, ज्यादा मुस्तहिक है। ठीक है, अगर मजलिस में 2 आदमी एक दूसरे के करीब बैठे हों, जैसे 2 औरतें सहेलियां वो करीब बैठी हुई हैं, आप उनसे इजाजत लिए बगैर आप उनको अलग ना करें। मसलन 3 सीटर सोफे पे बैठी हुई हैं, अब बीच में एक जगह है, अब आप जाके उनके बीच में बैठ गई, वो आपस में बेतकल्लुफ हैं, वो आपस में कोई बात कर रही हैं या कुछ है, अब आप बीच में बैठे हैं, ये सख्त यानी बेअदबी की बात है, और मजलिस के आदाब के खिलाफ है, कि इससे भी दिलों में तकलीफ होती है और दिल एक दूसरे से दूर होते हैं। इसी तरह मजलिस में किसी इम्तियाजी जगह पर बैठने से परहेज करना चाहिए। ये नहीं है कि जो मसलन जो मुअज्जज जगह है, मिसाल के तौर पे आपकी डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर आपको पता है कि घर का सरबरा इस कुर्सी पे बैठता है, अब आप गए हैं तो उन्होंने बैठना है वहां पे, लेकिन आप जाके वहां पे फौरन बैठ गए। किसी मुअज्जज जगह पे बैठने की कोशिश ना करें, जहां पे सब बैठे हैं वहां पे बैठे। इसी तरह मसलन टीचर की जगह, अब पता है कि ये टीचर की जगह मखसूस है, अब वहां पे जाके आप बैठ गए, टीचर खड़ा हुआ है, हाँ, अगर कोई खुद ही इसरार करे कि नहीं जी आप यहाँ पे बैठे, कोई बिठाए, तो फिर अलग बात है। ठीक है, इसी तरह मजलिस में हमेशा अदब से बैठना चाहिए, पांव फैला के, पिंडलियां खोल के इस तरह ना बैठे, इस तरह से इंसान गंवार दिखता है ना। ये ना ये चाहें कि भाई मैं जो हूं, जो भी सदरे मजलिस है, उसके करीब ही बैठूं, और उसके लिए आप चाहे मुझे किसी को तकलीफ देनी पड़े, किसी को उसकी जगह से उठाना पड़े, जी हम तो इतनी दूर से आए हैं, हम ही यहाँ पे बैठेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को जहमत हो, तकलीफ हो। और जब लोग ज्यादा आ जाएं तो फिर जाहिर है सिमट के बैठे। अच्छा, अब इसी तरह मजलिस में अगर दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कोई राज की बात हो सकता है कर रहे हैं, और इससे दूसरों को ये एहसास होता है कभी कि इन्होंने हमारे अपनी राज की बातों में शरीक करने के काबिल नहीं समझा, ये नहीं समझा, बदगुमानी पैदा होती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि मजलिस में बैठ के इंसान नजवा ना करे। दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि सबके सामने ही बात कर लें, चुपके 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 चुपके, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक तरफ होके लगे हुए, तो वो दूसरे बंदों को, उनके खिलाफ ना भी कर रहे होंगे, उनको बुरा महसूस होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात कोई फॉरेनर हमारी मजलिस में आ जाते हैं, जिनको हमारी जुबान नहीं आती, और फिर वो बेचारे मुंह देखते रहते हैं, हम सारे एक ही जुबान में बात करने शुरू होते हैं, और वो बेचारे अलग अलग होके बैठे रहते हैं। इसी तरह मजलिस में जो भी इंसान ने कहना हो, वो जो सदरे मजलिस है उसे इजाजत लेके कहना चाहिए, और ऐसे नहीं करनी चाहिए बातचीत के ऐसा लगने लगे कि आप ही सदरे मजलिस हैं, आप ही ऑल इन ऑल हैं, और अपने आप को नुमाया करना, अपने आप को ये करना कि इस तरह जैसे चार्ज संभाल लिया पूरी मजलिस का मैंने। बाद लोग स्टेज पे आते हैं, बार बार आते हैं, ताकि हमारी खुद नुमाई हो, जरा हम भी दिखें, और एक वक्त में एक ही बंदे को बोलना चाहिए, हर एक की बात को गौर से सुनना चाहिए, ऐसी ना बेताबी हो के दूसरों की बातें काट काट के बस अपनी ही बातें करते हैं, सारे एक ही दफा बात शुरू कर दें। इसी तरह मजलिस में जो राज की बातें हैं, उनको बाहर नहीं बयान करना चाहिए, ये भी मजलिस की अमानत होती है। तो ये सारी बातें जो मजलिस से मुतल्लिक हैं, हमें इनको लिख लें, इनको जहाँ पे हमने और मैनर्स सीखे हैं अपने स्कूलों में कॉलेजों में, ये मजलिस के गैदरिंग्स के मैनर्स शायद हमें कहीं नहीं सिखाए जाते, जो आज हमारा ये हाल है कि मस्जिद में देख लें, किसी दावत में देख लें, किसी जगह पे देख लें, किसी गैदरिंग में देख लें, हमारे दिल इतने तंग हैं कि हम किसी के लिए कुशादगी नहीं पैदा करते। कितने ही पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, लेकिन इतने दिल तंग होते हैं कि उन लोगों के लिए, मिसाल के तौर पे, जो बाद में आने वाले हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, उनके लिए पहले ही पर्स रख के जगह रख लेते हैं, दूसरे लोग चाहे खड़े रहेंगे, हमने नहीं जगह देनी, हमने तो फलां के लिए जगह पहले ही रिजर्व की हुई है, भाई जब वो आएगा तो तब की बात है, दूसरों को तो बैठने दो उस वक्त, लेकिन हम इतने दिल की तंगी रखते हैं, नहीं छोटी छोटी बातों में हमारे दिल कितने तंग है। हालांकि क्या फरमाया, फफसा हो, कुशादगी पैदा करो, जगह दो दूसरों को, यफसाहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। और हम जगह देंगे भी तो अपनी सहेली को देंगे, अपनी किसी खास उसको जानने वाली को देंगे, कितनी दफा ऐसा होता है हम किसी मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए जगह दे दें, चाहे मस्जिद हो चाहे कोई भी जगह हो, अल्लाह के घर में भी नहीं हम कुशादगी पैदा करते। तो अब इज़ा क़ीला इन्शुज़ू फ़ान्शुज़ू यरफ़ा अल्लाहु लदीना आमनू, जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, कोई इसमें हरज की बात नहीं है, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो जाती, और अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद करेगा इस वजह से। देखिए अल्लाह ताला ने साथ साथ इंसेंटिव्स दिए हैं ना, साथ साथ रिवॉर्ड्स की बात की है कि क्या मिलेगा तुम्हें, वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म दिया गया वो दर्जों में है, यानी वो ऊंचे हैं, बुलंद दर्जे उन्हीं के हैं जो इल्म वाले होते हैं, इल्म वालों के दर्जात बुलंद है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी अगर इंसान चाहता है ना कि मेरे दर्जे बुलंद हो तो इल्म ले, इस तरह की सिर्फ ऐसी बातें कर लेने से, फैल के बैठने से, माइंड करने से, और इससे ये इन बातों से इंसान नहीं बुलंद होता, इल्म से होता है, और जो इस हुक्म की इताअत करेगा तो ईमान वालों में अल्लाह ताला उन ईमान वालों के को बुलंद करेगा, और जो इल्म दिए गए हैं अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा। इल्म वालों के भी तो दर्जात है ना अल्लाह के यहाँ, जिसका जितना इल्म ज्यादा होगा उसका उतना ही दर्जा भी बुलंद होगा। लेकिन इल्म का मतलब सिर्फ हाली कुली इल्म ऐसा नहीं है, बल्कि मतलब ये होता है कि जिसके अंदर अमल भी हो। अगर अमल के बगैर है तो वो खाली है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम अमल करते हो उससे अल्लाह बाखबर है।